ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 32 और श्लोक संख्या है 16। ये त्विहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धया नितः कुर्वन्त्य प्रतिसिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णशः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, कृपया दोहराइए। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। तात्पर्य भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं, इन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, अर्थात श्री भगवान से स्वतंत्र, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। उन लोगों की बात तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते रहते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी वृंदावनवासी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि आपके सामने आज ये सेवा कर सके। श्रीमद् भागवतम की बहुत सुंदर चर्चा। तो ये अध्याय का शीर्षक है कर्म बंधन। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं, प्रत्येक जीव कर्म बंधन में फंसा हुआ है। श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते समय खास करके ऐसे सर्दी के मौसम में जहां तापमान सबसे न्यूनतम है, यहां तक कि कई भक्तों को श्लोकों को आवृत्ति करना भी ठीक से नहीं हो रहा था, थर थर कांप रहे थे, क्योंकि श्लोक भी इस प्रकार से कभी कभी इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं कि आवृत्ति करना भी मुश्किल होता है। तो यहां भगवान कपिल देव अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। 13 नंबर श्लोक जो है कल वर्णन किया गया था, उसमें वो एक ही श्लोक यहां लिखा था, लेकिन वास्तव में यहां 13, 14, 15 और तीनों श्लोकों को एक साथ लिया गया है। तो इसलिए यहां अभी 16 को हम अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो तीन श्लोक जो कल जो लिखा गया था वो वास्तव में एक नहीं, इस प्रकार से तीन श्लोक हैं, 13, 14 और 15। तीनों श्लोकों का एक साथ प्रभुपाद जी ने अनुवाद तथा तात्पर्य दिए हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये वास्तव में भगवान कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि ब्रह्मा और ऊंचे लोकों में रहने वाले ऋषि मुनि या कुमारगण जो भी हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि ये सृष्टि जो देख रहे हैं हम वो प्रलय होने के बाद सब मुक्त हो जाते हैं। नहीं। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मुक्त नहीं होते हैं तो फिर से जब नया सृष्टि प्रारंभ होता है उस समय उनको फिर से इस जगत में आना पड़ता है अपनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए। तो यहां उसके आगे के बताते हैं, ये श्लोक को देखिए कैसे वो विश्लेषण हुआ है। जो लोग, उससे सबसे पहले तो तू शब्द का प्रयोग करेंगे, तू इह, लेकिन किंतु, तू का अर्थ है लेकिन, प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं, या तथा, ये तथा जो लोग, फिर आगे देखिए इह, देख रहे ना, इस संसार में आसक्त अर्थात विषयों के प्रति प्रबल आसक्ति अनुरक्त, फिर क्या है, मनस, जिनका चित मन आसक्त विषयों के प्रति आसक्त हैं, वो क्या होता है, कर्मसु अर्थात अलग अलग सकाम कर्मों में, जिनका जो लोगों का चित विषयों के प्रति आसक्त रहते आसक्त होता है और वो श्रद्धा से, श्रद्धया शब्द आया है पहले लाइन में, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से युक्त हैं, कैसे, सकाम कर्मों में, सकाम कर्म के प्रति वो श्रद्धा से युक्त हैं और करते हैं, करते हैं कैसे, सेकंड लाइन देखिए, कुर्वंती, करते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़ा और व्याख्या करते हैं, अप्रतिसिद्धानी, अप्रतिसिद्धानी अर्थात वेद में वर्णित, वेद विहित, वेद में जो वर्णन किया गया है, क्या क्या वर्णन किया गया है वेद में, नित्यानी, नित्य कर्म को, और अपि शब्द से हमें यह समझना चाहिए कि काम्य कर्मों को, नित्य कर्म और काम्य कर्म, ये सब कर्मों को, च शब्द से और या भी, तो नित्य कर्म और काम्य कर्मों को वो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, संपन्न करते हैं कि कृष्ण सह, बारंबार या विधि विधान से, सरल भाषा में कहा जाए तो जो लोग इस संसार में विषयों के प्रति आसक्त हैं वो लोग वेद में वर्णित सकाम कर्मों को बहुत श्रद्धा से, निष्ठापूर्वक, बड़े ध्यान से, विधि विधान से ये सब कर्मों को करते हैं, जैसे नित्य कर्म है और काम्य कर्म है। ये क्या होता है समझने के लिए बहुत आसान है, नित्य कर्म है जैसे दैनंदिन कार्य है, पाता जगना, ब्रह्म मुहूर्त में सज्जा त्याग देना और संध्या वंदन आदि करना, सुबह दोपहर शाम को, और किसी को जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं या जप करते हैं उसका जप करना, अलग अलग जो रिवाज है उसका पालन करना, डेली ड्यूटी जिसको सरल भाषा में कहेंगे, दैनंदिन कार्य, हमारे जैसे दैनंदिन कार्य होते हैं उस प्रकार से दैनंदिन कार्य, उसको कहते हैं नित्य कर्म। ये भी लिखा गया वेदों में, इसको बड़े अच्छी तरह से करते हैं, और इसके साथ साथ काम्य कर्म, काम्य कर्म क्या होता है, वो ये है कि अब आगे का क्या है, हालांकि आजकल 90% लोग या उसे भी ज्यादा जानते ही नहीं, सोचते हैं बस यही एक जीवन है, इसमें जो हम करेंगे भोगेंगे बस। काम्य कर्म है जैसे सकाम कर्म, ये पूजा करना, वो व्रत करना, ये उपवास करना, और इससे क्या होगा कि इस जीवन में हम थोड़े सुख शांति में रह सकते हैं और अगला जीवन जो है हमारा ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में अच्छा आराम से रहेंगे नंदन कानन वन में, सोम रस का पान करके रमणियों के साथ बड़े सुख में रहेंगे। इसके जिसके प्रति चित्त आसक्त है वो लोग सब वेद में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों का वर्णन है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से, जैसे कोई गलती ना हो जाए, इस प्रकार से करते हैं। एक तरह से ये लोग नास्तिकवाद से अच्छे हैं, जो लोग वेद को नहीं मानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं अस्तित्व को, तो ये अच्छे हैं कि कम से कम वेद को मानते हैं, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं, है कि नहीं, कि केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहना, जिसके द्वारा इस जीवन में कैसे हम अच्छे सुख शांति में रहें, थोड़ा कुछ दान धर्म कर दिए, कुछ यज्ञ कर दिए, रीति रिवाज के अनुष्ठान के पालन किए, तो जो भी कर्म करते हैं इतना तो हम जानते हैं कि उसका फल हमें जरूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कर्म के द्वारा हमें फल मिलता है तो हम सुख शांति में रहना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर पर्टिकुलर यज्ञ किए, एक जो वर्णन की गई है, तो उसको उसके लिए फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अच्छे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। लोगों के चित्त में तरह तरह की कामनाएं हैं ना, इसलिए तो सुनिए थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका। इसमें वो कहते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में टीका में कहते हैं, क्योंकि उन लोगों में भक्ति का लेश मात्र नहीं है, भक्ति हृदय में नहीं है, उसके वजह से यहां तक कि ब्रह्मा या बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोक में रहने वाले जो ऋषि मुनि भी हैं या कुमारगण भी हैं, इतना ध्यान रखिए, केवल एक ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, या एक कोई सेट नहीं है कि ये ऋषि सप्तऋषि हो या ऐसे, हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा रहते हैं, और फिर ऋषियां रहते हैं, फिर कुमारगण भी रहते हैं, तो अलग अलग सब रहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है, हमारे इस ब्रह्मांड में जो हम वास करते हैं, यहां चतुर्मुखी ब्रह्मा, जानते हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे ब्रह्मा भगवान के भक्त होते हैं। तो यहां चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं कि जो लोग, जो ब्रह्मा या जो ऋषि मुनि गण, क्योंकि कई सारे ऋषि मुनि हैं, जो कोई कहता है कर्म सिद्धांत, कोई कहता है मीमांसा, कोई कहता है योग, पतंजलि योग के लिए प्रणेता है, और गौतम वो तर्कवाद मीमांसा, अलग अलग जो है सिद्धांत, जो छह प्रकार के सिद्धांत है, अलग अलग ऋषियां छह सिद्धांतों का अलग अलग प्रणेता है। तो जो भक्ति से रहित हैं वो लोग प्रलय के बाद महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब पुनः सृष्टि होती है तो उनको फिर से इस जगत में आना पड़ता है उनके कार्य को आगे चलाने के लिए। आगे फिर से ब्रह्मा बनेंगे, देव बनेंगे, अलग अलग सब, क्योंकि वो उनका कार्य अधूरा रह गया, उनकी इच्छा अधूरी रह गई, पूरा नहीं हुआ, तो फिर से चक्रवर्ती पाद कहते हैं सकाम कर्म के लोक में आते हैं। सकाम कर्म का अर्थ क्या है? इसी संसार में जो लोग रहते हैं, जो कर्म करते हैं, इसी लोक में आते हैं। आगे कहते हैं कि आगे के ये श्लोक से लेकर आगे के छह श्लोक तक ऐसे कर्मों को निंदा की गई है, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं, साधारण पुराण या कोई वेद उपनिषद नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम अमल पुराण है। इसलिए सर्वप्रथम जो भी आप भक्त लोग, हम भक्त लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझ लेना चाहिए, पहले से ही बता दिया गया है कि धर्म प्रोचित कैतवत्र, अर्थात इस भागवतम में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के बारे में बताई गई है, इस संसार में रह के कैसे अच्छी तरह रहें, और ये 14 भुवन में ही चक्कर काटते रहे, इसके बारे में केवल वर्णन नहीं है, जो कि अन्य शास्त्र पुराणों में, महाभारत में, यहां तक वेद उपनिषद में वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दृष्टिकोण से इसको निंदा की गई है। कोई अगर इस प्रकार से फिर से लौट के आता है, आगे के 6 श्लोक में इस प्रकार से बताई गई है, तो वो लोग नित्य कर्म करते हैं और काम्य कर्म करते हैं, सकाम कर्म आदि। यद्यपि ये शास्त्रों में रिकमेंड है, करने के लिए कहा गया है, फिर भी जो कि इसको निंदा की गई है कि ये वास्तविक हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर वेद में वर्णित कर्मों को निंदा की गई है तो जरा सोचिए, जो लोग वेद को मानते नहीं है, जो लोग पाप करते हैं, उनकी क्या गति है? कोई कह सकता है, अरे ये तो लिखा है वेद में, ये शास्त्रों में लिखा है ये सब पूजा करने की, ये सब करने की, और आप इसको कहते हैं ये सही नहीं है। फिर जो लोग करते ही नहीं कुछ, केवल कहते हैं ना, ईट ड्रिंक बी मैरी, दुनिया के जो 99% लोग उसमें ही फंसे हैं, उनकी क्या गति है? उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति जग का जो स्तर है बहुत ही अलग है। श्रीमद् भगवत गीता से हम कुछ लेते हैं, क्योंकि श्री भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसे लोगों की कैसी मति होती है। कृपया दोहराइए, यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यद् अस्तित्ववादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिं प्रति। इसका अर्थ क्या हुआ? अल्प ज्ञानी मनुष्य, जिनका बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो क्या करता है, स्वर्ग के प्राप्ति एक, या कोई ऊंचे कुल में जन्म, अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस यही कहा गया है। तो ऐसे लोग जो हैं भगवत गीता में श्री भगवान के द्वारा वास्तव में निंदा की गई है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाला प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियों का उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, और तरह तरह की यज्ञ भी करते हैं, ज्योतिष्टम यज्ञ प्रमुख जो है, वेद के कर्मकांड में कहा गया है अपाम सोमवृता अभूव, जो लोग चातुर्मास, प्रभुपाद जी यहां बहुत सुंदर कहते हैं, सुनिए ध्यान से, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। चातुर्मास समझते हैं ना, सावन भादो अघन आश्विन और कार्तिक, तो वो लोग जो चातुर्मास करते हैं वो लोग सदा सुखी रहते हैं सोम रस पाने के लिए। यहां तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोग, अभी इंपोर्टेंट सेंटेंस है, ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो ऐसे शारीरिक सुख निस्संदेह विषय है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर इस सुख को भोग करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो केवल इस संसार में सुख भौतिक आसक्त भौतिक सुखों के प्रति आसक्त रहते हैं, वो इस प्रकार से तथाकथित सकाम कर्म में फंसे रहते हैं, लेकिन उससे उनको भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। जैसे यहां सोम रस की बात हो रही है, सोम रस प्राप्त प्रभुपाद जी तापत्र में लिखते हैं, यहां तक कि इस जगत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोम रस को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कौन है? मैं तो कहीं देखा नहीं इसे सोम रस प्राप्त करने की। यहां तो अगर सुबह सुबह गरम गरम चाय मिल गया तो बहुत हो गया, वो कहते हैं यही सोम रस है कि नहीं। वो कई बार ऐसे देखते हैं, हम लोग परिक्रमा में देखते हैं, तो कोई कहीं कहीं जगह पे सर्दियों में भंडारा देते हैं चाय की। तो एक बार बरसाने में हम लोग जा रहे थे, तो कोई कह रहा था महाराज जी आइए, भक्त लोग आइए, चाय चाय गरम चाय लीजिए। तो हमने ऐसे बता दिया कि हम छुड़ाते हैं, पीते नहीं है। तो वो थोड़े से नाराज हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चाय थोड़ा सा पी लिया तो उसको सोचते हैं कि ये अमृत के समान है। सोम रस कहां प्राप्त होगा? यहां तो उपलब्ध ही नहीं है। तो इस प्रकार से सुखों को भोगना चाहते हैं। तो वास्तव में शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये भागवत प्रमाण है, आप पढ़ेंगे आगे जाके नौवें स्कंद में एक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन है, एक ऐसे राजा का चरित्र वर्णन है जिसको इस संसार का सबसे द टॉप मोस्ट सुख है ना प्राप्त हुआ था, सबसे टॉप सबसे जो श्रेष्ठ सुख, सुंदर शरीर था, बलवान शरीर, जिसको पूरा दुनिया प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं तो लोग क्यों जिम्स में जाते हैं, कसरत करते हैं कि सुंदर शरीर को प्राप्त करें। आजकल देखते हैं सब तरुण तरुणियां लड़के लड़कियां जो जाते हैं थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं सुंदर शरीर को। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं 50 के बाद हो जाऊं, सब लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा जवान रहूं। तो जो 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 सुख अभी हम गिनाएंगे, जो जो लोगों को चाहिए वो उस राजा को प्राप्त था। सुंदर शरीर हो गया, धनवान, पूरे पृथ्वी का वो राजा था। और क्या चाहिए बताइए? ये जितने विश्व अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी भारत को मिला के पूरा पृथ्वी का ऐसा राजा था, सब उसके कंट्रोल में थे। और ऐसा नहीं कि कोई बगावत कर दे, कोई भी रायट्स नहीं, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं है। ऐसे और यश यश के बारे में क्या कहें, सब लोग उसको इतना चाहते थे, वास्तव में बड़ा धार्मिक राजा था। और उसकी यश के बारे में क्या कहें, ख्याति के बारे में कि स्वर्ग तक उसका ख्याति फैला हुआ था, कि स्वर्ग के लोग भी स्वर्ग में उसके गुणगान होते थे। यहां के लोग को कौन जानता है? एक कोई अगर मान लो अपने देश में बड़ा राजा बन गया तो उसके देशवासी जानेंगे, और ज्यादा से ज्यादा उम्र जाने के बाद 20-40-50-60-70-80-100 साल के बाद कोई नहीं जानता है, भूल जाते हैं सब। जानते हैं ना प्रभुपाद जी जब फ्रांस में गए थे तो वो कहे कि किसी ने कहा प्रभुपाद दिस इज द स्टैच्यू ऑफ नेपोलियन, तो प्रभुपाद ने कहा कि फ्रांस इज हियर बट वेयर इज नेपोलियन, फ्रांस तो अभी तक ऐसे ही है जैसे था, वो कहां गए, नेपोलियन कहां गए। तो कहने का मतलब ऐसे कई आए गए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी ख्याति कब तक रहती है, लेकिन इस राजा की ख्याति कैसे, ऐसे थर्ड क्लास के लोगों के नाम भागवतम में नहीं आता है। इस राजा की ख्याति भागवतम में है, शास्त्रों में है, और चंद्रवंशी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख राजा है। और क्या बताइए, सभी प्रकार के सुख जितने भी सब हम देखते हैं, चाहे कोई मॉरिशस जाए या स्विट्जरलैंड जाए, जो भी सुख मिलता है इस जगत के, तो बात छोड़िए, ये लोग तो इससे अलावा कुछ जानते ही नहीं। 14 भुवन में जहां जहां भी अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्लैनेट्स हैं, अच्छे अच्छे सुख समृद्धि है, वहां इसके इनका पहुंच था और ये सुख भोग कर रहे थे। बड़े धार्मिक और सब प्रकार से संपन्न, जिसको प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम भी कब ऐसे बने। हाँ सही में, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा है कि हमारा भी थोड़ा नाम हो, हम लोग हमें भी पूछें, हमारे पास धन हो और जो भी ऐश्वर्य चाहिए वो प्राप्त हो। इसकी इतनी ख्याति हुई इस राजा की, एक बार देवराज इंद्र के सभा में नारद मुनि ने इसकी गुणगान किए, इसकी इतनी गुणगान की कि इस विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी लालायित हो गई इसकी पत्नी बनने की, और वो है उर्वशी। अब आपको शायद पता चल गया होगा कोई राजा कौन है। कौन बोले? माताएं भागवत पढ़ते हैं लगता है, हैं? विश्वामित्र और उर्वशी कहां से आ गए? आपने नहीं पढ़े हैं। पुरुर्वा महाराज, महाराज पुरुर्वा। अब नवस्कंद में पढ़ेंगे जब सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की गिनती आती है तो चंद्रवंश के राजा में सबसे प्रमुख थे पुरुर्वा महाराज, जो इतने बड़े ख्याति संपन्न राजा थे। इस दुनिया में अगर किसी को मिस वर्ल्ड मिल जाए या मिस यूनिवर्स मिल जाए अपनी पत्नी के रूप में, जरा सोचिए उसको उसको क्या लगेगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा सुख समृद्धि और किसको मिलेगा, मुझसे बड़ा सौभाग्यवान लक्की दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। किसको अगर इस प्रकार से स्त्री या धन मिल जाए उनसे कुल में जन्म। पुरुर्वा महाराज को उर्वशी जैसा स्त्री मिली, कैन यू इमेजिन? उर्वशी के शरीर से ऐसा सुगंध आ रहा था कि देवता लोग गंधर्व लोग भी घायल हो जाते थे। इस दुनिया के किसी थर्ड क्लास के स्त्री या पुरुष के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मान लो अगर उर्वशी सामने आ जाए तो बेहोश हो जाएंगे। सेलेस्टियल दिव्य स्वर की अप्सरा जो भगवान के साक्षात शरीर से प्रकट हुई, गुरु से नरनारायण भगवान के, ऐसे स्त्री जिसको प्राप्त हुई अर्धांगिनी के रूप में, उस व्यक्ति का सौभाग्य कोई कमी है क्या कहा जाए? हाँ? लेकिन क्या गति हुई जानते हैं उनके? आगे जाके आप पढ़ेंगे ग्यारहवां स्कंद में, जिसका उदाहरण साक्षात भगवान उद्धव को सुनाते हैं उद्धव गीता में, कि अयल नामक एक राजा थे जिसको अयल गीत कहते हैं भागवतम में। भागवतम में कई गीत है, गोपी गीत, भ्रमर गीत, रुद्र गीत भी है, उस प्रकार से अयल गीत। अयल जो महाराज पुरुर्वा उनका ही नाम है, उन्होंने जो उक्ति दिए हैं जब उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, उससे पहले क्या भोग उन्होंने नहीं भोगे। जब उर्वशी के साथ रहे बहुत भोग भोगे संसार में, तरह तरह के जो भी है, आंखों के लिए, नाक के लिए, जीवा के लिए, स्पर्श इंद्र के लिए, कोई सीमा ही नहीं, ऐसा भोग तो कोई प्राप्ति नहीं कर सकता इस संसार में। और उसके बाद जब उर्वशी छोड़ के चली गई, इनकी हालत खराब हो गई। ऐसे बड़े दिग्गज महाराज, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कैसे पागल हो जाते हैं थोड़ी सी इंद्र सुख के लिए। पीछे पीछे वो गए तो इस प्रकार से उनको खोजते रहे प्राप्त करने के लिए। फिर कथा तो लंबी है, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। उन्हीं गंधर्वों की कृपा से देवताओं ने, देखो देवताएं कैसे, किसी देवता की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है, देखिए द्वितीय स्कंद में वर्णन है, द्वितीय स्कंद के शुरुआत में वर्णन है। आप पढ़ोगे ये फलाना देवता को पूजा करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसको पूजा करेगा तो वो मिलेगा, उसको पूजा करेगा तो वो मिलेगा, ऐसे जो जो व्यक्ति को चाहिए कैसे प्राप्त करेंगे इसका वर्णन भागवतम में। और लास्ट में लिखा गया है किसकी कोई भी इच्छा हो या ना हो, काम हो सर्व काम हो, कम से कम भगवान के शरण में आना चाहिए। तो मैं यहां बता रहा हूं उस वही देवता लोग उनको प्रेरणा दिए कि आप यज्ञ कीजिए, एक विशेष यज्ञ होता है वो यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ करेंगे तो आपको उर्वशी लोक प्राप्त होंगे। और किया महाराज ने, महाराज ने वो यज्ञ किया, यज्ञ किए तो फिर वो उर्वशी लोक में गए और उर्वशी के साथ सहस्रो, भागवत में वर्णन है, सहस्र वर्ष तक वो आनंद में व्यतीत किए। फिर भी यहां से जो पॉइंट शुरू होता है, फिर भी मैंने आप अब तक आपको इतने जो जैसे बताया ना, द टॉप मोस्ट प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार के सबसे बड़े सुख की जो जिसको चाहिए वो उनको प्राप्त था, फिर भी उनके मन में शांति नहीं था। वो चित जो है, उनका मन जो है, जितना भी भोग भोगते हैं वो और उनके हृदय में लालसा धधकती रहती थी, इच्छा बढ़ती रहती है। ये मत सोचिए कि मन में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो ये कर बैठते हैं। ये करने से ये शांत नहीं होगा, ध्यान रखिए, शास्त्र प्रमाण है। एक एक इच्छा को पूरा किए ना, उसके पीछे पीछे थोड़ा और कर लेते हैं, क्या जाता है, ऐसे मन कहते हैं। मन इतना बदमाश है, अगर जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कोई उपवास कर रहा है, एकादशी का दिन है, उपवास कर रहा है, लेकिन भूख सह नहीं पा रहा है, तो उसने देखा कि आश्रम में चाहे कहीं भी हो, बाहर भी दूध मिल रहा है या फल मिल रहा है या एकादशी प्रसाद मिल रहा है, तो उसका मित्र कह रहा है अरे कम से कम 12 बजे तक तो रह जाओ, भक्त लोग यहां वृंदावन में 12 बजे तक उपवास करते हैं। तो उसने नहीं, यार सह नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा ले लिया। अब थोड़ा सा ले लिया तो फिर 2-4, 8-10 साबूदाना के बड़े चले गए, और जब जब गया ना, जब टूट ही गया, तो अब क्या रखा है, एकादशी का ही प्रसाद है ना, तो ले लो, इसमें क्या है। तो ऐसा करके हम ले लेते हैं। ये एक साधारण उदाहरण है, सबका अनुभव की बात है, मैं बता रहा हूं कि कैसे मन की बात अगर हम सुने और थोड़ा सा उसको मौका दिए, अरे हो गया ना, बस कर लो सब, कौन देखता है, सब चालू कर दो, तो ऐसे फिर हम फंस जाते हैं। तो ये कभी शांत नहीं होने वाली है। अग्नि में ज्यादा घी डालने से कभी कभी शांत होता है, अग्नि शांत नहीं होती है। तो उस प्रकार से पुरुरवा महाराज हजारों सहस्रों वर्ष तक उर्वशी के साथ रहे, रमण किए, जो भी भोग भोगना था भोग रहे थे, लेकिन फिर भी चित्त शांति नहीं हुआ। और बाद में फिर वो खुद बोल रहे हैं कि इस संसार में किसी के भी द्वारा आध्यात्मिक गुरु भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े देवता भी क्यों ना हो, ब्रह्मा आदि देवता भी, प्रमुख देवता क्यों ना हो, किस कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता जीव को आत्यंतिक सुख या चीरकाल तक शांति प्रदान नहीं कर सकते। विषय वासना जो सब प्रत्येक के हृदय में है ना, केवल इस संसार में एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखिए, केवल एक ही व्यक्ति, अगर उनका अनुग्रह कृपा हो जाए ना, तब कोई व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है। और ये एक रियलाइज्ड अनुभवी राजा का उक्ति है, 11वां स्कंद में पढ़ सकते हैं, और वह है महाराज पुरुरवा। वो फिर उस समय भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं, हे भगवान, आपके बिना मेरे अंदर जो ये धधकती हुई वासना, इस संसार के प्रति भोग वासना या किसी भी जो अनर्थ है, प्रवृत्तियां हैं, इसको कोई समन नहीं कर सकता, बड़े बड़े देव भी इसको कर नहीं सकते, संसार से हमको मुक्ति नहीं प्राप्त कर, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते आपके कृपा के अलावा। इसलिए तब वो जो भोग तो भोग लिए, उसके बाद वैराग्य के जो जीवन उन्होंने जिया, उसके बाद जो उक्ति करते हैं वो सब भक्तों के लिए सुनने लायक है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके उन्होंने बहुत सुंदर उक्तियां बताया कि कैसे इस संसार के भोग है, चाहे स्त्री पुरुष का जो संबंध है, कितना घटिया है कि आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता और शांति प्राप्त नहीं कर पाते। तो वास्तविक शांति और सुकून किसको प्राप्त होता है, तो वे केवल भगवान की भक्ति में। ये सब शास्त्रों में लिखा गया है, इसे हमें जानना चाहिए। यहां तक कि अंत में आपको एक बात बताऊं, मैं भगवान की भक्ति जैसे बताई गई है, भगवान की भक्ति में ही जो असली सुख और शांति और आनंद है, उसमें भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादंबिनी में लिखते हैं कि उसमें भी कई बार अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे व्यक्ति के मन में वासनाएं उठते हैं। आप जानते हैं ना, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, तो श्रद्धा, फिर उसके बाद क्या है, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद जो अनर्थ निवृत्ति का स्तर आता है, तो चक्रवर्तीपाद वर्णन करते हैं चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। सबसे पहला दुष्कृत अर्थ, दूसरा है सुकृत अर्थ, दुष्कृत उत्थ, फिर दूसरा पहला है, फिर दूसरा है सुकृत उत्थ, तो संधि है इसको जोड़ेंगे तो सुकृतोत्थो, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ, ऐसे चार प्रकार के अनर्थ है। तो उसमें से ये जो चार प्रकार के अनर्थ है उसमें से जो सुकृतोत्थ अनर्थ है, जो अनर्थ हमारे भक्ति में जीवन में बाधा है, यहां तक कि भक्ति करने पर भी हमारे जो मार्ग में बाधा आता है हमें वो जानना चाहिए, वो है क्या सुकृतोत्थ अनर्थ? उसको कहते हैं कि पूर्व जन्म में, समझ रहे ना, ये तो केवल एक ही जन्म नहीं ना, इससे पहले पूर्व जन्म में जितने भी हम लोगों ने सकाम कर्म या पुण्य कर्म किए हैं, किसको किसी प्रकार का पुण्य कर्म समझिए, भगवान की भक्ति के अलावा, वो जो पुण्य कर्म किए हैं उसका संस्कार इस जन्म में होता है, रहता है, और जिसके वजह से साधक के मन में भोग वासना उद्रेक होती है, बढ़ती है, या तो इस संसार में या तो फिर ओह कैसे हम स्वर्ग लोक जाएंगे, ऊंचे लोक में जाएंगे, ये भी जो इच्छा है ये भी भोग वासना है। फिर से कहता हूं सुनिए, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के फल के प्रभाव से जो भोग करने की इच्छाएं इस जन्म में भक्ति करते हुए किसी के हृदय में उद्रेक होती है उसको कहते हैं सुकृतोत्थ अनर्थ। इसको जड़ से उखाड़ना साधक का कर्तव्य है। उससे उसका लक्षण क्या है, लक्षण बताऊं? लक्षण यह है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी गोल को भूल जाना, लक्ष्य को भूल जाना, और यहां आके दूसरे दूसरे दिशाओं में भटक जाना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, धनम जनम सुंदरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसके उसमें जो चित्त लग जाता है ना वो है अनर्थ, वो सुकृतोत्थ अनर्थ है। इसलिए हमें, जैसे आप जानते हो भक्ति रसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र किम अभ्युदयो भवेत। जब तक हृदय में भुक्ति, भुक्ति का अर्थ क्या है, भोग करना, भोग करना, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी जो भोग करने की प्रवृत्ति है, जो धनम जनम सुंदरी पूजाला प्रतिष्ठा के प्रति जो इच्छा है, इसके प्रति लालायित रहना एक, दूसरा है मुक्ति, ओह बहुत हो गया अब चलो इस संसार से मुक्ति हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना, चलो लीन हो जाते कहीं भी किधर भी, ये संसार से बस छुट्टी लेना है, ये मुक्ति की इच्छा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, ये जब तक किसी भक्त के हृदय में रहता है उसको भक्ति रस का आनंद कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो कहते हैं ना कि प्रभु जी इतने सालों से जप कर रहे हैं, इतने सालों से श्रवण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी वो हृदय में, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी कहते हैं, हम रोज सुनते हैं कि चांट हरे कृष्ण बी हैप्पी, केवल एक पहला लाइन ही दिखाई देता है, दूसरा लाइन दिखता ही नहीं, चांट हरे कृष्ण ही दिखता है और बी हैप्पी कहां होता है, वो तो बोलने के लिए प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक बात है ये, बी हैप्पी है, प्रभुपाद जी ने कोई गलत नहीं कहा है, चांट हरे कृष्ण बी हैप्पी, लेकिन वो बी हैप्पी तब प्राप्त होंगे, उस स्तर को तब प्राप्त होंगे जब ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, क्या भक्ति करते समय अगर भुक्ति की इच्छा मुक्ति की इच्छा और यहां इस संसार में जो भी है उसके प्रति हम अगर आसक्त रहते हैं, लालायित होते हैं, तो भक्ति का जो सुख है, जो भक्ति का जो आनंद है, जो जो भक्त आस्वादन करता है, जिसके हम कहते हैं रोज दस नाम अपराध के बाद कहते हैं कि वो उसको हम प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति को जो प्राप्त करें, वो मिलेगा नहीं। इसलिए हम सब अपने हृदय में, अपने जो चित्त में झांक के देखना चाहिए, क्या भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति के अलावा और तो कुछ इच्छा नहीं हो रही है? अगर कुछ और इच्छा हो रही है तो समझ लीजिए कि हम हमारे मार्ग में बाधा है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है, सकाम कर्म के बारे में तो बताई गई है, वो तो छोड़िए, जो लोग वेद को मानते नहीं, नास्तिक हैं, बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, दैट इज डिफरेंट कैटेगरी। और एक लोग हैं जो वेद को मानते हैं, तरह तरह की यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, वो करते हैं, इस संसार में कुछ फल मिलेगा, सुख में रहेंगे और अगला लोग जो है स्वर्ग लोक प्राप्त होंगे, ये तो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, भक्ति मार्ग में आने के बाद भी जो इच्छाएं रहती है, वो पूर्व जन्म के सुकृत जो पुण्य कर्म से जो सुकृत था अनर्थ, जिसको चक्रवर्ती पात कहते हैं, वो भी हमारे भक्ति मार्ग के लिए बाधा है। इसलिए शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको भी छांट के निकालना पड़ेगा, तब भक्ति लता बीज जो है धीरे धीरे से वो बढ़ेगी और हमारा ध्येय जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगी। समय हो गया है, श्रीमद् भागवतम की जय, शैल प्रभुपाद की जय। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, कि हम कैसे उस स्तर को प्राप्त हों। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।